मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमोता ही जाते अर्हंतादि जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजून हैं सतत केवल ज्ञान पाने पूजून हैं सतत केवल ज्ञान पाने। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। हम सभी लोग अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए परस्पर सेवा की भावना से हमारा जीवन अच्छा बनता है, इस बात पर विचार कर रहे हैं। आचार्य भगवंतों ने सेवा के लिए बैया व्रत कहा है और सेवा के अंतर्गत चार प्रकार के दान देना और भगवान अरहंत की पूजा करना ये भी शामिल किया है। इतना व्यापक दृष्टिकोण सेवा का आचार्य भगवंतों ने हमें दिया है। एक श्रावक के जीवन में उसके जीवन को अच्छा बनाने के लिए सबसे आसान अगर कोई रास्ता है तो दान और पूजा, इन दो के माध्यम से श्रावक अपने जीवन को एक ऊंचाई दे सकता है, वो अपना आध्यात्मिक और आत्मिक विकास भी कर सकता है। चार प्रकार के दान सर्वत्र प्रसिद्ध हैं, आहार औषध आवास और उपकरण दान। ज्ञान दान उसी के अंतर्गत आ जाता है। समंतवद्र आचार्य महाराज बहुत बड़े दार्शनिक आचार्य रहे हैं, उनका सोच बहुत उदार और बहुत व्यापक रहा, इसलिए उन्होंने ज्ञान दान के स्थान पर उपकरण दान रखा है। ज्ञान का उपकरण ही अकेला ज्ञान दान के अंतर्गत नहीं आना चाहिए, पीछे कमंडलू भी उपकरण हैं जो कि संयम और शुद्धि का उपकरण है, इसलिए ज्ञान का उपकरण और संयम और शुद्धि का उपकरण, इन सब का दान जो है वो उपकरण दान के अंतर्गत समाहित हो जाता है, इसलिए ज्ञान दान के स्थान पर उपकरण दान रखा है। इन सब में अलग अलग जीव प्रसिद्ध हुए हैं, उनकी अपन को थोड़ी सी चर्चा कर लेनी चाहिए और अपन ने इस दान या सेवा के बारे में बहुत प्रकार से विचार किया है। ऐसा लगता है कि देने से तो हमारे पास फिर शेष क्या रहेगा, तो भैया देने वाली चीज पर निर्भर करता है कि क्या शेष रहेगा। सबसे श्रेष्ठ तो प्राणी मात्र के लिए प्रेम देना है और प्राणी मात्र के लिए आत्मज्ञान देना है। जीव मात्र के प्रति जो दया और अहिंसा और करुणा का भाव है वो हम एक दूसरे को दें तो कभी हमारे भीतर घटता नहीं है, हम अपनी श्रद्धा से दूसरे के भीतर श्रद्धा उत्पन्न करें तो हमारी श्रद्धा घटती नहीं है। हम अपने आत्मज्ञान से दूसरे को आत्मज्ञान प्राप्त करने की प्रेरणा दें तो हमारा आत्मज्ञान घटता नहीं है। रत्नत्रय का दान इसीलिए श्रेष्ठ दान है क्योंकि उसे दिए जाने पर देने वाले के पास उसकी कमी नहीं हो पाती। और सब संसार की चीजें लेन देन में घटती बढ़ती हैं लेकिन श्रद्धा ज्ञान और आचरण कितना भी बांटा जाए वो घटता नहीं है। समुद्र और नदी और तालाबों के बीच एक बार बातचीत हुई। नदी ने समझाया तालाब, तालाब ने समझाया नदी को कि क्या करती हो, सारा पानी ले जाकर के समुद्र में डालती रहती हो। अरे सोच समझ करके देना चाहिए, क्या 24 घंटे देते ही रहोगे, एक दिन खाली हो जाओगे। नदी मुस्कराई, उसने अपना बहना नहीं छोड़ा, पानी बहता था, समुद्र में गिरता रहता था। बहुत समझाने पर भी नदी ने कुछ नहीं बोला, चुप रही। धीरे धीरे जब गर्मी का मौसम आया तो नदी का पानी भी सूखने लगा, कमती होने लगा, पर पतली सी धारा तो बहती ही रही लेकिन तालाब का जो भरा हुआ रुका हुआ पानी था वो तो धीरे धीरे समाप्त हो गया। नदी ने अब तालाब से कहा कि तुमने तो किसी को कुछ नहीं दिया, फिर तुम्हारा अब जल कैसे समाप्त हो गया। मैं निरंतर समुद्र को अपना जल देती हूं, फिर भी मेरे पास अभी भी जल देने के लिए शेष है। देने से चीज घटती नहीं है, देने से हमारे परिणाम निर्मल होते हैं और परिणाम निर्मल होने से जो चीजें हमें प्राप्त हैं वे आसानी से हमारे पास ठहरती हैं और अधिक मात्रा में हमें प्राप्त भी होती है। इसलिए यह जो दान की प्रक्रिया है उसे अत्यंत निर्मल भाव से बनाए रखना चाहिए। जब तक चार प्रकार का दान श्रावक देता रहेगा, भगवान अनंत की पूजा करता रहेगा, तब तक धर्म शेष रहेगा। इसके बाद धर्म की परंपरा समाप्त हो जाएगी, छठे काल की शुरुआत हो। ये दोनों चीजें पंचम काल के अंत तक चलेंगी क्योंकि चार प्रकार के दान से ही धर्म तीर्थ चलता है और अनंत भगवान की पूजा भक्ति से हमें अनंत भगवान के जैसे बनने की प्रेरणा मिलती है और वास्तव में यही धर्म है। चारों प्रकार के दान अपने आप में अलग अलग प्रकार से श्रेष्ठता को लिए हैं। अपेक्षा रूप से देखा जाए, ज्ञान के अभाव में संसार का भ्रमण होता है, इसलिए ज्ञान दान श्रेष्ठ है। एक दूसरे के लिए संसार में ठहरने और रुकने के लिए स्थान देना, निश्चिंतता देना, अभय दान देना, यह भी श्रेष्ठ है। आहार औषध दान भी अपनी जगह श्रेष्ठ है। लेकिन जब आचार्य भगवंतों से पूछा जाता है कि चारों प्रकार के दान में से श्रेष्ठ दान कौन सा है, सर्वश्रेष्ठ, तो सभी आचार्य एक ही स्वर में कहते हैं कि आहार दान सबसे श्रेष्ठ दान है। और लॉजिक देते हैं, तर्क देते हैं कि आहार क्या दिया, मानो मोक्ष मार्ग दे दिया, क्योंकि मोक्ष मार्ग पर चलने वाले के लिए और सब चीजों में स्वाधीनता है, सिर्फ इस देह की पराधीनता के कारण उसे आहार के बिना मोक्ष मार्ग पर चलना मुश्किल मालूम पड़ता है। इसलिए सबसे श्रेष्ठ आहार दान है, ऐसा आचार्य भगवंतों ने एक स्वर में कहा है। और अपने यहां पर यह परंपरा है। भैया किसी को आप कितनी बढ़िया औषधि दे दो, किसी को कितनी बढ़िया ठहरने का स्थान दे दो, सुरक्षा दे दो और किताबें ल्यान के मूड़ पे ही धर दो, हम कचू भी कर लो आप जी सब, लेकिन उसके जो है दो दाने पेट में नहीं होंगे तो ये सब चीजें व्यर्थ मालूम पड़ेंगी, क्योंकि प्राण ही नहीं रहेंगे तो ये सब चीजें क्या काम आएंगी। आहार दसवां प्राण माना है, दस प्राणों से जीव जीता है, पांच इंद्रियां हैं, मन वचन काय है, आयु है और श्वासोच्छ्वास है। ये दस प्राण तो हैं मनुष्य के, लेकिन अन्नम वै प्राण, अन्न भी प्राण है जिसके माध्यम से जीवन चलता है, इसलिए चारों दानों में से श्रेष्ठ दान आहार दान दिया माना गया है। शीशेन वृषभ सेने कौंडेशः सूकरश्च दष्टान्तः आहार औषध यौरप क्युपकर्णा वाशयोश्च दानेन। चार प्रकार के दान में चार लोग प्रसिद्ध हुए हैं। श्रीसेन नाम के राजा प्रसिद्ध हुए हैं जिन्होंने आहार दान दे करके भोग भूमि और फिर वहां से स्वर्ग और परंपरा से शांतिनाथ भगवान तीर्थंकर पद को प्राप्त किया है उस आहार दान के फल से। वृषभ सेना नाम की राजा की बेटी थी जिसके स्नान के जल से रोग दूर हो जाते थे। उसके पूर्व जीवन में वह मंदिर में झाड़ू पोंछा करने का काम करती थी, तो उस मंदिर में जिनालय में आकर के मुनि महाराज एक कोने में ध्यानस्थ हो गए। इसे झाड़ू पोंछा करना था तो इसने अपशब्दों का उच्चारण करके वहां से उन्हें उठने के लिए कहा। जब वे ध्यान से विचलित नहीं हुए तो सारा कचरा झाड़ कर उनके ऊपर डाल दिया, झाड़ू भी मार दी। राजा ने आकर के जब उस कचरे के ढेर में कुछ हिलते देखा तो हटाया, तो मुनि महाराज ध्यानस्थ थे। जब राजा को उनकी सेवा करते देखा तो उसे उस झाड़ू पोंछा करने वाली उस बेटी को बहुत ग्लानि हुई, उस आत्मग्लानि से, और उसने मुनि महाराज की फिर सेवा की औषधि इत्यादि के द्वारा, जिसके परिणाम स्वरूप उसे आगामी जीवन में औषध सर्वौषध सामर्थ्य प्राप्त हुई, जिसके स्नान के जल से और जीवों के रोग व्याधियां दूर हो गए। एक छोटा सा हमारा जो भाव है वो हमारे जीवन को कितनी ऊंचाई दे सकता है, लगती बहुत सामान्य सी चीज है। अकेले आहार दान से शांतिनाथ भगवान तक तीर्थंकर पने की यात्रा हो गई। इधर औषध दान में अगर देखा जाए तो इसके बाद दूसरा उदाहरण आता है नारायण श्री कृष्ण का। मुनि महाराज की अस्वस्थता देख करके अपने वैद्य जी से औषध पूछ करके सब जगह महीने भर तक औषध की व्यवस्था करवाई। मुनि महाराज का रोग ठीक हुआ उस औषध दान की वजह से। आगामी तीर्थंकर प्रकृति का बंध करेंगे ये ग्रंथों में उल्लेख मिलता है। छोटी सी चीज है लेकिन वो जो भाव है त्याग का भाव है, उससे जो परिणामों में निर्मलता आती है वो महत्वपूर्ण है। कौंडेश नाम का ग्वाला था, जंगल में गाय चराते समय वृक्ष के कोटर में एक ग्रंथ रखा देखा, तो ज्ञान तो था नहीं पर यह पूज्य है, कल्याणकारी है, ऐसा सोचकर उसकी पूजा करता था। वहीं पर पद्मनंदी नाम के मुनि महाराज आए तो सोचा कि ये शायद ज्ञानवान होंगे, इनको भेंट कर दूं, सो शास्त्र उसमें से उठा करके और उन्हें भेंट कर दिया, और उन्होंने उस शास्त्र का स्वाध्याय करके, चारण विद्धिधारी थे सो आकाश मार्ग से नमो अरहंताणम कह करके और गमन कर गए। उसके शब्द पड़ गए कान में नमो अरहंताणम, सो मरण के समय नमो अरहंताणम कहते हुए, और मरण को प्राप्त हुआ तो उसी गांव में सेठ के यहां पर पुत्र उत्पन्न हो गए कौंडेश नाम का। और जंगल में फिर से उन्हीं मुनि महाराज को देख करके उसे जाति स्मरण हो गया कि अरे मुनि महाराज ने मुझे नमो अरहंतानम कहा था और मैंने उन्हें शास्त्र भेंट किया था। इतने मात्र से उन्होंने उन्हीं मुनि महाराज के पास में और दीक्षा लेकर इतना ज्ञान प्राप्त किया कि ज्ञान दान के फलस्वरूप और वे अपार शुद्ध ज्ञान के धारी हो गए एक शास्त्र का भेंट करने मात्र। भैया उसके पीछे दृष्टि भर ध्यान रखना। वैसे तो बहुत सारे शास्त्र भी बटवा दो अपनो नाम लिख के फोटो लगा के तो कछु नहीं होने, बट रहे हैं खूब वो में का है, लेकिन उसके पीछे भाव क्या है? मैं तो अज्ञानी हूं, मुझे तो आत्मज्ञान की दो बातें नहीं आती, जिसे देऊं वो आत्मज्ञान प्राप्त कर ले और कल्याण कर ले, मैं तो इतने में ही संतुष्ट हूं। ऐसा जो परिणाम है वो परिणाम है देने के पीछे हमारे जीवन को अच्छा बनाने का। चीजों के आदान प्रदान से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, उसके पीछे छिपी हुई भावना, चीज छोटी सी भी होवे और उसके पीछे भावना बहुत बड़ी होवे तो वो दान को श्रेष्ठ बना देती है। जब नेहरू जी थे तब प्रसिद्ध था कि उनकी फोटो के पीछे उनके दस्तखत करी हुई चीज जिसको मिल जाए वो अपने को बहुत माला माल समझता था। एक खाट बनाने वाला सुंदर सी खाट बना करके छोटी सी और उनको बैठ करने दिल्ली गया था, वहां पर सबने उसको दुत्कार के बाहर भगा दिया। उसी बीच में ऐसा कुछ मौका आया कि खुद नेहरू जी बाहर आए अपने भवन से, तो उसे बाहर करते देख करके स्वयं सेवकों से कहा कि ठहरो, कौन है भाई? दीनहीन गरीब सा है, अपने कंधे पर खाट लिए हुए खड़ा है, रंग बिरंगे उसने खाट में पाए लगाए हैं, सूत की उसमें तागा बुन करके बना के लाया है। उन्होंने कहा ठहरो मेरे पास आने। कहा क्या क्या चाहते हो? बोले चाहता कुछ भी नहीं हूं, मैं तो सिर्फ मैंने जो ये खाट बहुत दिनों में मेहनत से बनाई है आपको भेंट करना चाहता हूं, बच्चों के खिलौने खेलने की चीज है, आपके घर में काम आएगी, और मैं क्या मुझे चाहिए कुछ नहीं। लोग जिनके पास अपनी मांगे लेकर के जाते थे उनके पास कोई उनके बच्चों के लिए कुछ देने आया है ये छोटी चीज नहीं है, भले ही वो और अपनी सूत की बुनी हुई लकड़ी की खाट लेके आया है पर उसके पीछे छिपी हुई भावना देख रहे हैं। तो फौरन क्या कहा, मेरा फोटो लाओ। प्रसिद्ध था, सब सकते में आ गए कि किसको दे रहे हैं, कौन आ गया है, सब इतने लोगों में जिसको देना होगा फोटो के पीछे अपने हाथ से दस्तखत करके और उस व्यक्ति को दिए कि आज जो है ये है इसका पात्र देने योग। कौन सी चीज की वजह से दिया भैया? बखाट बहुत कीमती थी क्या? लाख दो लाख रुपया की थी? नहीं, दो रुपट्टी की थी वो खाट, लेकिन वहां पर वो महत्वपूर्ण नहीं था कि कितनी कीमती है, महत्वपूर्ण था कि भावना कितनी बड़ी। जब भी हम कोई चीज देते हैं, एक कागज पे तुम चार लाइनें लिख के दे दो वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। और आज के समय में तो बहुत बड़े बड़े 50-50 रुपया के कार्टों पे छाप छाप के देती सुटरी रहती भी इतने होते। अपन ने ये सारी चीजें बहुत दिखावटी करके उसके पीछे छिपी हुई भावना को नष्ट कर दिया। दान के पीछे छिपी हुई भावना हमारे जीवन को और प्राप्त करने वाले के जीवन को उज्जवल बनाती है। और फिर आखिरी में कोई नहीं मिला, आचार्य समंतभद्र स्वामी जैसे आचार्य महाराज को कोई का नाम नहीं मिला। शीशेन वृषभ सेने कौंडेशा सूकरश्च दृष्टांत। बताइए, आवास दान में बड़े बड़े हवेली बनवाकर धर्मशाला बनवा करके चले गए, उनका नाम नहीं लिखा, बताइए आप। और आवास दान में इतने बड़े रत्नकरण श्रावकाचार ग्रंथ में सूकर का नाम लिखा, सोच सकते हैं आप। चार लोगों में जो प्रसिद्ध हुए हैं उनमें आवास दान में सूकर का नाम लिखा हुआ है। था क्या, एक कुम्हार का जीव था और एक नाई का जीव था, दोनों ने जो है और धर्मशाला बनवाई, उसमें मुनि महाराज आकर के रुके तो कुम्हार के जीव ने तो उनकी बहुत सेवा करी और जो नाई का जीव था उन्होंने उनको वहां से दुत्कार के बाहर निकाल दिया। अब बात आई गई हो गई, लेकिन इन परिणामों के कारण और भी जो परिणाम रहे होंगे, आपस में ये दोनों झगड़ते हुए मरण को प्राप्त हो, और वो जो कुम्हार का जीव है वो सूकर की पर्याय को प्राप्त हुआ, और ग्वाले का जीव जो है वो शेर की पर्याय को प्राप्त हुआ, क्रूर पर्याय को प्राप्त हुआ। ये सूकर की पर्याय अत्यंत तिरस्कार की पर्याय है। हमारे मन में बहुत सी चीजों को जानने की जिज्ञासा के बीच में एक जिज्ञासा यह भी होती थी कि यह पर्याय कैसे मिलती होगी, ऐसा क्या किया होगा। और सब जीवों के छोटे छोटे बच्चे, शेर का भी छोटा बच्चा होवे कितना भी खतरनाक होवे, सांप का छोटा बच्चा होवे कितने भी खतरनाक है, लेकिन एक बार अपनी गोद में उठाने का मन होता, लेकिन सूकर के छोटे से बच्चे को भी छूने का मन नहीं होता। ऐसी कैसी तिरस्कार और निंदा की पर्याय है। तो कहते जिसने पूर्व जीवन में त्यागी वृत्ति की निंदा करी और तिरस्कार किया है, उसका तिरस्कार कदम कदम पर, ग्लानी करी उसने कि कैसा कैसा व्यक्ति है ये, इतना मलिन सी देह है, और साथ में तिरस्कार भी किया और ग्लानी भी करी, जिसकी वजह से और वर्तमान में देखते हैं अपन यहां से वहां कोई भी जो है सामने आते देख करके और दूर हट जाता है, छूना पसंद नहीं करते, हमेशा तिरस्कार ही मिलता है। ऐसी भी पर्याय मिल गई, लेकिन इस पर्याय में भी अपना कल्याण करने की भावना उसके भीतर थी। इस सूकर की पर्याय में भी सोचिएगा, जीव बदल जावे तो भावना बदल करके अपना पूरा संसार ही समाप्त कर सकता है, किसी भी पर्याय में, किसी भी देह में क्यों ना। सो वो सूकर जो है उसको जाति स्मरण हो गया कि अरे मैंने तो मुनि महाराज को धर्मशाला में सेवा करी थी और मेरे मित्र ने उन्हें बाहर निकाल दिया था, मैं बड़ा दुखी हुआ था और मित्र से मैंने झगड़ा किया था, उसकी वजह से हमारी ये पर्याय जो है बिगड़ गई थी, अब क्या करूं। तो देखता है कि जिस गुफा में शेर आता था उसमें मुनि महाराज बैठे हैं, अब वो आएगा तो इनको मुश्किल में ना डाले, क्योंकि पहले के जीवन में भी मुश्किल में डाला था। तो वहीं दरवाजे पर बैठ जाता है और जैसे ही सिंह आता है व्याघ्र, तो उससे कहता है कि भीतर नहीं जा सकते, वहां मुनि महाराज तपस्या कर रहे हैं, उनकी रक्षा करता है, उस युद्ध में भीतर नहीं जाने देता, मरण को प्राप्त होकर के स्वर्ग जाता है, ऐसा वर्णन। स्वर्ग का मतलब है सुख प्राप्त करता है, ऐसा ले लो, अगर अन्य विश्वास हो स्वर्ग नरक पे तो कोई बात नहीं, उसमें क्या आपके न करे विश्वास से थोड़ी भी चीजें कछुए तय क्यूते भाई जा जहां है सो तई है भी तो हाँ, पर आप ये मान के चलो कि वो एक सुख का अपार सुख को प्राप्त कर लेता है। क्यों? क्योंकि उसने और निश्चिंतता दी, सुरक्षा दी। ये जो निश्चिंतता अपन को, तो निश्चिंतता पड़ोसी से नहीं है, खतरा सबसे ज्यादा वही से। हम एक दूसरे को निश्चिंतता नहीं दे सकते, जे नहीं निश्चिंतता दे सकते कि भैया हमारी तरफ से निश्चिंत रहियो, हम तुम्हारे जीवन में कोई उपद्रव नहीं करेंगे जीवन भर। इतनी निश्चिंतता, इतना आवास दान का मतलब क्या है, अभय दान का मतलब क्या है, निश्चिंतता देना, अपने साधर्मी को निश्चिंत कर देना कि हमारी तरफ से आपके जीवन में कभी कोई क्षति नहीं होगी। ये दान की प्रक्रिया इस तरह है। हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्यकार हुए, पुराने लोग तो परिचित होंगे, नए का तो नहीं कह सकते क्योंकि जमाना तो अब टेक्नोलॉजी का है, जमाना साहित्य का थोड़ू है, कला और साहित्य की बात तो अब बहुत पुरानी हो गई। तो उनके समय में इतने ऐसी स्थिति से गुजरे कि चिट्ठियां आती थी उनके जवाब लिखने के लिए, और कागज तो था पर भेजने के लिए टिकट के लिए पैसे नहीं थे, अब इकट्ठी हो गई चिट्ठियां इतनी, चिंतित रहते थे कि सबके जवाब कैसे भेजें, पैसे ही नहीं है, 5 रुपए होते तो सब चिट्ठियां चली जाती। अब उनके मित्र को मालूम पड़ा तो उनके मित्र ने जो है, और एक दिन उनकी टेबल पर 5 रुपए रख दिए कि आपने कहा तक नहीं कि आपको टिकट की आवश्यकता है, ये लो 5 रुपए और आप टिकट खरीद के सब चिट्ठियां पोस्ट करो। अब समय सबका बदलता है, समय बदला, अब एक कोई किताब चल पड़ी, उसकी अच्छी खासी रॉयल्टी मिल गई, अब उनके पास बहुत पैसा हो गया। जैसे ही पैसा हाथ में आया तो सबसे पहले अपने मित्र के पास पहुंचे और धीरे से 5 रुपए उसके पॉकेट में रख दिए। मित्र ने कहा ठीक है भाई, मना भी किया कि हमने तुम्हें इसके लिए थोड़ू दिए थे, उधार थोड़ी दिए थे, वो तो हमने तुम्हारी मदद की थी, मगर नहीं माने, 5 रुपए रख दिए। मित्र ने कुछ नहीं कहा कि ठीक है भाई। अब 2-4 दिन हुए, फिर मित्र से मिले तो फिर एक 5 रुपए पॉकेट में रख। मित्र को जरा अच्छा नहीं लगा कि कहा भी कि हम पहले तो आपसे ले चुके, दे चुके हैं, आप कुछ नहीं बोले हजारी प्रसाद। अब तीसरी चौथी बार जब मिले तो फिर वही बात, फिर 5 रुपए रख दिए। अब एक दिन जो है मित्र ने कहा कि भाई हमें तुमसे मिलना बंद करना पड़ेगा, ये कुछ हमें समझ में नहीं आया। एक बार दो बार तो ठीक है कि आपने हमने आपको दिए थे, तो ऐसा कौन सी बड़ी चीज दे दी थी जो आप जब भी मिलते हो तो हमें 5 रुपए पॉकेट में रख देते। हजारी प्रसाद द्विवेदी की आंख भीग गई, मित्र के कंधे पर हाथ रख के कहा कि मित्र तुम्हें पूरे जीवन रोज भी 5 रुपए दूं तो कभी तुम्हारे दिए 5 रुपए का उपकार चुका नहीं सकता, क्योंकि तुमने जिस समय मुझे वो दिए थे उस समय वो मेरे लिए बहुत कीमती थे। अब इन 5 रुपए का, ऐसे 5 रुपए तो मैं सैकड़ों लुटा दूं तो भी उन 5 रुपयों की कीमत अदा नहीं कर सकता। भैया समय पर अपने साधर्मी को आवश्यकता पड़ने पर जो हम उसकी मदद करते हैं, जो सेवा करते हैं, वो महत्वपूर्ण है। कितनी करी है ये महत्वपूर्ण नहीं है, कैसे करी है, कैसे भावों से की है, ये महत्वपूर्ण है। आज अपने धर्म के आगे बढ़ाने के लिए अहिंसा, दया और करुणा का विचार फैलाने के लिए और अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए मुझे तो एक ही चीज लगती है कि साधर्मी के प्रति अत्यंत प्रेम भाव रखते हुए और हमें हमेशा उसकी मदद करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। अपने पास जो है वो हम दें। लिखा तो ये है कि आपके पास प्रेम से भरे 2 शब्द हैं तो आप वो ही दीजिएगा किसी को, और कोई बहुत बड़ी चीज आवश्यक नहीं है। यहां पर व्यक्ति को 2 ही जरूरतें हैं हर मनुष्य की, कि कोई उसके प्रति विश्वास रखे और कोई उसे संभालने वाला होवे। 2 ही चीजें, ट्रस्टफुल होना और केयरिंग नेचर होना। जीवन की तमाम जरूरतें पूरी हो जाने के बाद भी 2 जरूरतें पूरी करना आसान नहीं है। वही इसीलिए ये सेवा को भी धर्म माना गया है। सेवा के मायने यही है कि मैं अपना विश्वास व्यक्त करता हूं आपके प्रति और आपके संभालने के लिए यहां पर मैं हूं, ऐसा हम उसे विश्वास दिला सकें। ये 2 चीजें आज वर्तमान में बहुत आवश्यक हैं। आचार्य महाराज नहीं होते आज तो जिस तरह आज हम लोग इस पूरे धार्मिक वातावरण का लाभ लेते हुए परस्पर साधर्मी की मदद कर रहे हैं, शायद ये चेहरा हमारा नहीं होता। उनके उपकार के कारण उन्होंने जो हमारे लिए दिया है वो अमूल्य है, दे रहे हैं निरंतर। आज भी आज वहां पर सब लोग अपन यहीं बैठ करके अपनी श्रद्धा की आंख से देखें, उतनी दूर तो दिखाई पड़ेगा, हिंदू आंखों से तो नहीं दिखाई पड़ेगा, लेकिन श्रद्धा की आंख से देखें तो वहां पर दिखाई पड़ेगा कि सब कितने प्रसन्न चित्त हो करके और 6ठा 7वां गुण स्थान प्राप्त करने के लिए उत्सुक होंगे। वो दृश्य महत्वपूर्ण है।
अपन तो जा सोचत के कैसी उनकी बिनौली निकली हुई है, कैसी शोभा यात्रा निकली हुई है। भैया ये मैं कछु सार नहीं है, की सेवा करो, संघ के नायक आचार्य की सेवा करो, मुनि जनों को अध्यापन करवाने वाले उपाध्याय की सेवा करो, जिन्होंने जब से दीक्षा ली है तब से जिन्हें रोग घेरे हुए है उनकी सेवा करो, इसके बाद भी वे रोग के बसबूत होकर के भी और विचलित नहीं है अपनी तपस्या में लगे हैं, जो निरंतर अध्ययन में लगे हैं ऐसे शिष्य की सेवा करो, चतुर्विध संघ की सेवा करो, गुरु की जो परंपरा है कुल की उसकी सेवा करो, ऐसे नौ भेद में आखिरी में रखा कि मनोज्ञ की सेवा करनी चाहिए। कौन है मनोज्ञ? कहते दीक्षा भी मुखा मनोज्ञ, जो दीक्षा के अनुभव अभिमुख है अगले अंतर मुहूर्त में जिसे और जैनेश्वरी दीक्षा प्राप्त होने वाली है वो है सेवा के वैयावृत्ति के योग, उसके चरणों में बैठो, वो अत्यंत वैराग से भरा हुआ है, संसार उसे अभी असार मालूम पड़ रहा है, तब बनेगी वो स्थिति छठे सातवें गुण स्थान की आज ही दोपहर में। और जब मुझे एक एक क्षण वो याद आते हैं कि किस चरम पर होता है, जब दीक्षा के अभिमुख होते हैं तो वैराग चरम पर होता है, तब लगता है कि यह सब जो है संसार असार है, मुझे इसमें से अपने सारभूत आत्म तत्व को ही प्राप्त करना है, बाकी तो यहां कुछ भी प्राप्त करने योग्य नहीं। श्रद्धा प्राप्त करें, आत्मज्ञान प्राप्त करें और सदाचरण प्राप्त करें, यही जो है वास्तव में लेने देने की चीजें हैं। संसार में तो लेन देन भौतिक वस्तुओं का लेन देन होता है, वास्तव में तो अपने जीवन के कल्याण के लिए तो यही चीजें हैं जिनको कि हम परस्पर एक दूसरे को देकर और अपने जीवन को और दूसरे के जीवन को ऊंचा उठाए। आचार्य महाराज के उस समय जब पहली दीक्षा दी थी तब का दृश्य भी मुझे याद है। उन्हीं दीक्षा सुबह 8:30 थे, द्रोणगिर के अंदर पहाड़ के ऊपर इक्का दुक्का कोई दर्शनार्थी मंदिरों में दर्शन कर रहा था, हम सब जो है एलक शुल्लक जी और अपने शौच इत्यादि से निवृत्त होकर के कमंडल धोकर के रख रहे थे। उतने में आचार्य महाराज कमरे से बाहर वहीं देहलान में खड़े, क्यों शुल्लक जी? तो फौरन अपना कमंडल छोड़ के पहुंचे, धर्म ध्यान दीपिका कहाँ है? रखी ना है, उठा ला। सब लोग अपनी अपनी कि कुछ पढ़ाएंगे शायद, तो धर्म ध्यान दीपिका उठा करके लाए, चबूतरे पर बैठ गए। वहां से जो है भाई जी आ रही थी पूजा की थाली लिए हुए अपनी पूजा करने, तो आचार्य जी ने कहा है धरा। हम लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसे तो किसी को नहीं बुलाते, बुला करके थाली रखवा ली, अब क्या करेंगे, अब बैठ जाओ सब। अब कुछ समझ में नहीं आया कि वो क्या रहा, ऐसे बिठाल दिया। समय सागर जी महाराज भी हेलक थे, सबसे पहले वो बैठे थे, कहा कि खोलो विधि निकालो उसमें से मुनि दीक्षा की। तब समझ में आया कि अरे किसकी हो रही, अब किसकी हो रही ये भी नहीं पता, इतना अननोन। आचार्य महाराज का अपना सोच देखिएगा, अमृत सरवार सिद्धि योग था उस दिन 8 मार्च, वो पहली दीक्षा मुनि दीक्षा देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, आचार्य महाराज के द्वारा दी गई पहली मुनि दीक्षा। और बिल्कुल ऐसे ही सब सहज रूप से बैठे हुए हैं पूरे, और मुनि दीक्षा की विधि खोली आचार्य जी ने जो है उसी पूजा की तरफ से, और स्वस्तिक इत्यादि लिखकर उन पर बैठ गए और संस्कार हो गए और समय सागर जी महाराज मुनि बन गए। उसके बाद तो सारा दिन तांता लगा रहा आने जाने, आस पेर में जहां जहां मालूम पड़ा, एक लाइन दिखती थी वहां से ऊपर चढ़ती हुई और जाती हुई पूरे दिन। इस तरह उसके पीछे जो उनकी भावना थी उसका ये सारा प्रभाव था। 50 लोगों के बीच में हुई लेकिन दिन भर में 50,000 लोग दर्शन करने। आज अभी वहां पर बता रहे हैं कि अभी से वहां कल की तारीख में
श्री